भद्रं कर्णेभिश्रृणुयां भद्रं पश्येमाक्षैर्भिर्यजत्रा स्थैरङ्गैस्तुष्ट्वागं सस्तनूर्भिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। आजकल समाधि का प्रसंग चल रहा है। वैसे तो समाधि के बहुत भेद हैं, पर प्रधान रूप से दो ही प्रकार की समाधि है। एक तो शून्य समाधि और एक विज्ञानात्मक समाधि। यदि शून्य समाधि में जाना हो, सब प्रकार के विचारों का अभाव करना हो और निद्रा जैसी स्थिति में पहुंचना हो, तब तो संकल्प विकल्प का अभाव करना चाहिए पहले, और किसी ध्यान आदि की किसी बात की जरूरत नहीं है। जो भी विचार आए उसको हटाता चला जाए। तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है, यदि कोई लक्ष्य होता है सामने, तब तो उसके आधार पर विचार उत्पन्न होते रहते हैं और वो ज्ञानात्मक समाधि बनेगी। अगर लक्ष्य ना हो आत्मा या परमात्मा और केवल विचारों का अभाव करता चला जाए, विचारों को रोकता चला जाए, तो एक अवस्था ऐसी आ जाती है निर्विचार वैशारध्ये अध्यात्म प्रसादा। तो निर्विचार अवस्था हो करके अध्यात्म का प्रसाद प्राप्त होता है, शांति और आनंद की अनुभूति। और अगर ये इस अवस्था से भी और ऊपर चला जाता है तो शांति और आनंद का भी अभाव हो जाता है, क्योंकि लक्ष्य कोई नहीं था। और उस शांति और आनंद की जो अवस्था आती है वो एक प्रकार से चेतना के समीप होता है, पर चेतना का ज्ञान नहीं होता उस काल में, क्योंकि उस योगी ने तो ऐसे साधन और अभ्यास किए हैं जिससे कि उसको आत्मा का या परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। केवल संकल्प विकल्प का अभाव सा किया है उसने, और उससे शांति निरंतर बनी हुई है, पर उसको ये बोध नहीं होता कि मैं परमात्मा के समीप हो गया हूँ या उसकी अनुभूति हो रही है। तो फिर जा करके, क्योंकि लक्ष्य कोई नहीं होता, तो फिर वो शून्य अवस्था में चला जाता है, जैसे गाढ़ निद्रा की अवस्था में। एक तो ये इस प्रकार की समाधि है और दूसरी ज्ञान आत्मक समाधि है। शून्य समाधि में कुछ समय के पश्चात ऐसी अवस्था आ जाती है, क्योंकि इसमें भी होता तो सत्य ही प्रधान है, क्योंकि बिना सत्य प्रधान के वृत्तियों का निरोध नहीं। परंतु क्योंकि यहाँ ज्ञान का कोई लक्ष्य नहीं रखा होता, केवल विचारों का संस्कारों का ही निरोध करना होता है, एक प्रकार से ये असंपर्गात सी समाधि बन जाती है। पर ये बिना ज्ञान के बनती है, और ये अवस्था कई घंटे और कई दिन भी बनी रह सकती है। संकल्प के ऊपर इसका आधार होता है। पहले पहले अभ्यासी को इस विषय में 5-6, 4-6 घंटे का आसन पक्का कर लेना चाहिए। अगर 5-6 घंटे का आसन भी हो जाता है तो फिर 1.5-2 घंटे में, 2.5-3 घंटे में शून्यता आ जाती है, और फिर वो चाहे जितनी, क्योंकि शरीर का भान सा जाता रहता है, जैसे निद्रा की अवस्था में भान जाता रहता है। निद्रा में भी संकल्प लेकर के ही सोता है, और एक प्रकार से रोज का अभ्यास भी 6 या 8 या 10 घंटे का बना होता है, सोने का उसी संकल्प पर उठ जाता है। पर इसमें क्योंकि ध्येय कोई नहीं होता, ध्येय न होने से ये ज्ञान आत्मक समाधि नहीं होती। इसमें फिर भी विज्ञान की जिज्ञासा बनी रहती है। इस प्रकार की समाधि दो चार दिन की भी सिद्ध होने पर शून्य विज्ञान की जिज्ञासा बनी रह सकती है। जैसे एक व्यक्ति 6 घंटे सोया तद भी निद्रा है, 12 घंटे सोया तद भी नींद है, और 12 दिन सोता रहा तद भी निद्रा ही सिद्ध होगी। जैसे 6 घंटे की निद्रा में पूर्ति हो गई, ऐसे 6 दिन की निद्रा भी वैसी होगी। तो उसमें आत्मज्ञान की और ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा हो सकती है, पर हाँ शांति का और आनंद का अनुभव बना रहेगा। तो ये एक तो ये भी संकल्प के ऊपर ही निर्भर होती है। दूसरी समाधि होती है, हम इसको कहेंगे संप्रज्ञात समाधि। हालांकि संप्रज्ञात समाधि के पश्चात ही संस्कार शेषो अन्ना कहा है, विराम प्रत्याभ्यास पूर्वा संस्कार शेषो अन्ना। विराम हो गए प्रत्यय ज्ञान आदि, जिसके विचार आदि सब शांत और केवल संस्कार मात्र शेष रहे हैं, उन संस्कारों को निरोध करता चला जाता है। वैसे संस्कार अनंत हैं, कोई सीमा नहीं, उनका प्रवाह बह ही रहा है, परंतु एक ऐसी अवस्था सी ले आता है कि निरोध ही करता चला जाता है और थक सी जाता है। और जैसे रात्रि को निद्रा में मस्तिष्क थक जाता है, विचार शांत से हो जाते हैं, तो निद्रा जैसी ही अवस्था में वो चला जाता है, कोई विचार ज्ञान आदि के किसी प्रकार के नहीं रहते और वो उतने संकल्प तक वो विचार शांत बने रहते हैं। तो दूसरी समाधि है विज्ञान की, वो संप्रज्ञात समाधि है। और संप्रज्ञात में गया विज्ञान प्राप्त होता है गया शरीर का और स्थूल भूतों का, जिससे ये शरीर बना है। और अगर सूक्ष्म शरीर भी मानते हैं तो सूक्ष्म शरीर और जिन पदार्थों से सूक्ष्म भूतों से वो बना है। अगर कारण शरीर भी मानते हैं, जहाँ आत्मा का आवास और चित्त का आवास है, तो वहाँ भी गया इंद्रियों तो नहीं होती, सूक्ष्म शरीर तो नहीं होता, पर चित्त और अहंकार शेष रहते हैं कारण शरीर में। तो वहाँ उस काल में जा कर के आत्मानुभूति या ब्रह्मानुभूति होती है, क्योंकि जब तक इंद्रियों का संपर्क शरीरों के साथ में रहता है और इंद्रियों के विषयों का कुछ कुछ भान रहता है, तब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता है। शरीर का स्थूल शरीर का भान खत्म होने पर सूक्ष्म शरीर में स्थिति होती है, और सूक्ष्म शरीर का भान खत्म होने पर कारण शरीर में स्थिति होती है। तो इन दोनों शरीरों में तो वह इंद्रियों के विषय रहते हैं। यहाँ स्थूल होने के पश्चात ही इससे विरक्ति या वैराग होगा ना, जब तक इसे स्थूल शरीर का ज्ञान नहीं होगा तब तक वैराग भी नहीं होगा। और फिर इसके आगे सूक्ष्म विषयों का अनुराग होता है, सूक्ष्म शरीर में स्वर्ग आदि में उसके भोग माने जाते हैं, तो वहाँ भी ज्ञान होगा सूक्ष्म शरीर का और तभी उसके पश्चात वैराग होगा। इन दोनों शरीरों के पश्चात फिर अंतिम आत्मा की बात आती है, तो वहाँ केवल तत्व ज्ञान की ही आवश्यकता होती है। और फिर अंत में वो जो जिस समाधि का पहले वर्णन कर रहा था, संस्कार शेषो अन्य वाली बात रह जाती है, वहाँ केवल संस्कारों का ही निरोध या अवशेष रह जाता है आत्म साक्षात्कार होने के पश्चात भी, और ब्रह्म साक्षात्कार होने के पश्चात भी संस्कार शेष रहते हैं, उसके विषय में और कहता हूँ। ब्राह्म प्रत्यय अभ्यास पूर्वा संस्कार शेषो अन्य। ब्राह्म कहते हैं शांत हो गए प्रत्यय माने ज्ञान। जो बहुत काल से मैं स्थूल शरीर का ज्ञान किया था, सूक्ष्म का किया था, कारण का किया था, और प्रकृति से लेकर के उसके अंग पृथ्वी तक सारे कार्यों का साक्षात्कार किया, आत्मा की अनुभूति हुई ब्रह्मा परमात्मा की। तो आत्मा संबंधी, प्रकृति संबंधी, परमात्मा संबंधी संस्कार मेरे अंदर मौजूद हैं, ज्ञान हो चुका, आत्मा देख लिया, परमात्मा प्रकृति के भी स्वरूप, परंतु उनके संस्कार तो मौजूद हैं। जैसे मैं पहले किसी आश्रम विशेष में रहा हूँ, एक गृहस्थी है, बाद में वो सन्यासी बन गया, तो गृहस्थ आश्रम के ब्रह्मचर्य के वानप्रस्थ के उसके संस्कार तो मौजूद हैं ना, खत्म तो नहीं हुए, नाश तो नहीं कोई हुआ। तो कहते हैं कि ब्रह्म हो गया प्रत्यय माने ज्ञान जिसका शांत, या उनकी स्मृति भी खत्म हो चली है जिन पदार्थों का साक्षात्कार किया था, या उनके भी तो संस्कार मौजूद हैं, तो वो संस्कार मोक्ष का हेतु नहीं बनने देंगे, वो लगाए रखेंगे, क्योंकि ज्ञान होने पर भी तो उसके साथ संबंध तो रह सकता है ना, चाहे मैं उसका भोग ना करूं पर संबंध तो बना रह सकता है। वानप्रस्थी रहते हैं, पति पत्नी ब्रह्मचर्य आदि का पालन करते हैं, नियम आदि सब पालन करते हैं, पर साथ तो रह सकते हैं। तो इसी प्रकार प्रकृति के साथ में तो रह सकता है, परमात्मा के साथ में तो रह सकता है। तो कहते वो उनकी जो स्मृति है उन गया उसका विज्ञान भी शांत करना है, उसके संस्कारों को भी शांत करना है। वह प्रकृति का स्मरण आत्मा का स्मरण एक प्रकार से वो भी बंधन का हेतु बना रहेगा, क्योंकि स्मरण तो होता चित्त में, तो चित्त वर्तमान रहेगा तो चित्त के रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए कहा है कि प्रत्येक ज्ञान हो गया है जिसका शाम अभ्यास आदि के द्वारा, और तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वही त्रिशण्यम, यहां करके कहा कि गया गुणों से भी त्रिशण्य हो जाना, त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है उसका भी भान ज्ञान जाता रहना, और फिर जा करके आत्मा की स्वरूप में स्थिति होती है। वो संस्कार जो चित्त के अंदर वर्तमान थे, चित्त उन संस्कारों को लेकर के अपनी प्रकृति में विलीन हो जाता है, तो तब जा करके इसकी मोक्ष, इसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए ये कहा है विज्ञान की बात को संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात का भेद बतलाया। संप्रज्ञात समाधि में विज्ञान का तो सब प्राप्ति हो ही जाती है, तो वो विज्ञान भी फिर कुछ खटकने सी लगता है, चुभने सी लगता है, उससे भी विरक्त होना, उससे भी निवृत्त होना, क्योंकि वो विज्ञान भी बंधन का हेतु बना रहता है। तो उस विज्ञान को उन संस्कारों को लेकर के चित्त जो है अपनी प्रकृति में लीन, आत्मा की अपने स्वरूप में स्थिति।